मत्ती की मार्फत इंजील बाब 22। ईसा ने एक बार फिर तमसीलों में उनसे बात की। आसमान की बादशाही एक बादशाह से मुताबिकत रखती है जिसने अपने बेटे की शादी की ज़ियाफ़त की तैयारियां करवाईं। जब ज़ियाफ़त का वक्त आया तो उसने अपने नौकरों को मेहमानों के पास ये इत्तला देने के लिए भेजा कि वो आए, लेकिन वो आना नहीं चाहते थे। फिर उसने मज़ीद कुछ नौकरों को भेज कर कहा, मेहमानों को बताना कि मैंने अपना खाना तैयार कर रखा है, बैलों और मोटे ताज़े बछड़ों को ज़बह किया गया है, सब कुछ तैयार है, आए ज़ियाफ़त में शरीक हो जाएं। लेकिन मेहमानों ने परवाह ना की बल्कि अपने मुख्तलिफ कामों में लग गए। एक अपने खेत को चला गया, दूसरा अपने कारोबार में मसरूफ़ हो गया, बाकियों ने बादशाह के नौकरों को पकड़ लिया और उनसे बुरा सलूक करके उन्हें कत्ल किया। बादशाह बड़े तैश में आ गया, उसने अपनी फौज को भेजकर कातिलों को तबाह कर दिया और उनका शहर जला दिया। फिर उसने अपने नौकरों से कहा, शादी के ज़ियाफ़त तो तैयार है लेकिन जिन मेहमानों को मैंने दावत दी थी वो आने के लायक नहीं थे। अब वहाँ जाओ जहाँ सड़कें शहर से निकलती हैं और जिससे भी मुलाकात हो उसे ज़ियाफ़त के लिए दावत देना। चुनांचे नौकर सड़कों पर निकले और जिससे मुलाकात हुई उसे लाए, ख़्वाह वो अच्छा था या बुरा। यूं शादी का हाल मेहमानों से भर गया। लेकिन जब बादशाह मेहमानों से मिलने के लिए अंदर आया तो उसे एक आदमी नज़र आया जिसने शादी के लिए मुनासिब कपड़े नहीं पहने थे। बादशाह ने पूछा, दोस्त तुम शादी का लिबास पहने बगैर अंदर किस तरह आए? वो आदमी कोई जवाब न दे सका। फिर बादशाह ने अपने दरबारियों को हुक्म दिया, इसके हाथ और पांव बांधकर इसे बाहर तारीकी में फेंक दो, वहाँ जहाँ लोग रोते और दांत पीसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए कम। फिर फरीसियों ने जाकर आपस में मशवरा किया कि हम ईसा को किस तरह ऐसी बात करने के लिए उभारें जिससे उसे पकड़ा जाए। इस मकसद के तहत उन्होंने अपने शागिर्दों को हेरोदेस के पैरोकारों समेत ईसा के पास भेजा। उन्होंने कहा, उस्ताद हम जानते हैं कि आप सच्चे हैं और दयानतदारी से अल्लाह की राह की तालीम देते हैं, आप किसी की परवाह नहीं करते क्योंकि आप गैर जानबदार हैं। अब हमें अपनी राय बताएं, क्या रूमी शहनशाह को टैक्स देना जायज़ है या नाजायज़? लेकिन ईसा ने उनकी बुरी नीयत पहचान ली। उसने कहा, रयाकारो तुम मुझे क्यों फंसाना चाहते हो? मुझे वो सिक्का दिखाओ जो टैक्स अदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। वो उसके पास चांदी का एक रूमी सिक्का ले आए तो उसने पूछा, किसकी सूरत और नाम इस पर कुनिंदा है? उन्होंने जवाब दिया, शहनशाह का। उसने कहा, तो जो शहनशाह का है शहनशाह को दो और जो अल्लाह का है अल्लाह को। उसका ये जवाब सुनकर वो हक्का बक्का रह गए और उसे छोड़कर चले गए। उस दिन सदूकी ईसा के पास आए। सदूकी नहीं मानते थे कि रोज़े क़यामत मुर्दे जी उठेंगे। उन्होंने ईसा से एक सवाल किया, उस्ताद मूसा ने हमें हुक्म दिया कि अगर कोई शादीशुदा आदमी बे औलाद मर जाए और उसका भाई हो तो भाई का फ़र्ज़ है कि वो बेवा से शादी करके अपने भाई के लिए औलाद पैदा करे। अब फ़र्ज़ करें कि हमारे दरमियान 7 भाई थे, पहले ने शादी की लेकिन बे औलाद फौत हुआ, इसीलिए दूसरे भाई ने बेवा से शादी की लेकिन वो भी बे औलाद मर गया, फिर तीसरे भाई ने उससे शादी की, ये सिलसिला 7वें भाई तक जारी रहा। एक के बाद दिगरे हर भाई बेवा से शादी करने के बाद मर गया, आखिर में बेवा भी फौत हो गई। अब बताएं कि क़यामत के दिन वो किसकी बीवी होगी, क्योंकि 7 के 7 भाइयों ने उससे शादी की थी। ईसा ने जवाब दिया, तुम इसलिए गलती पर हो कि न तुम कलाम मुक़दस से वाकिफ़ हो न अल्लाह की कुदरत से, क्योंकि क़यामत के दिन लोग न शादी करेंगे न उनकी शादी कराई जाएगी बल्कि वो आसमान पर फरिश्तों की मानिंद होंगे। रही ये बात कि मुर्दे जी उठेंगे, क्या तुमने वो बात नहीं पढ़ी जो अल्लाह ने तुमसे कही? उसने फरमाया, मैं इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ। हालांकि उस वक्त तीनों काफ़ी अरसे से मर चुके थे। इसका मतलब ये है कि हकीकत में ज़िंदा हैं, क्योंकि अल्लाह मुर्दों का नहीं बल्कि जिंदों का खुदा है। ये सुनकर हुजूम उसकी तालीम के बायस हैरान रह गया। जब फरीसियों ने सुना कि ईसा ने सदूकियों को लाजवाब कर दिया है, तो वो जमा हुए। उनमें से एक ने, जो शरीयत का आलिम था, उसे फंसाने के लिए सवाल किया, उस्ताद शरीयत में सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? ईसा ने जवाब दिया, रब अपने खुदा से अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान और अपने पूरे जहन से प्यार करना, ये अव्वल और सबसे बड़ा हुक्म है। और दूसरा हुक्म इसके बराबर ये है कि अपने पड़ोसी से वैसी मोहब्बत रखना जैसी तू अपने आप से रखता है। तमाम शरीयत और नबियों की तालीमात इन दो अहकाम पर मुबनी है। जब फरीसी इकट्ठे थे, तो ईसा ने उनसे पूछा, तुम्हारा मसीह के बारे में क्या ख्याल है? वो किसका फर्जंद है? उन्होंने जवाब दिया, वो दाऊद का फर्जंद है। ईसा ने कहा, तो फिर दाऊद रूहुल कुदस के मार्फत उसे किस तरह रब कहता है? क्योंकि वो फरमाता है, रब ने मेरे रब से कहा, मेरे दहने हाथ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पाँव के नीचे ना कर दूँ। दाऊद तो खुद मसीह को रब कहता है, तो फिर वो किस तरह उसका फर्जंद हो सकता है? कोई भी जवाब न दे सका, और उस दिन से किसी ने भी उससे मज़ीद कुछ पूछने की जुरत न की।